सगल श्रेष्ठ को राजा दुखिया, हर का नाम जपत होय सुखिया। लाख करोड़ी वंदना परे, हर का नाम जपत निस्तर है। अनेक माया रंग तिथ ना बुझावे, हर का नाम जपता घावे। जी मार्ग ये जात के लाते, हर नाम संग हो सुहेला। ऐसा नाम मन सदा ध्याये, नान गुरुमुख परम गत पाइये।
ओम शांति। सुखमणि साहिब, सकल सृष्टि के को राजा दुखिया, हर का नाम जपत होई सुखिया। लाख करोरी बंध न परे, हर का नाम जपत निस्तरे। अनिक माया रंग तिख न बुझावे, हर का नाम जपत आघावे। जीव मार्ग इह जात अकेला, तेह हर नाम संग होत सुहेला। ऐसा नाम मन सदा ध्याइए, नानक गुरुमुख परम गत पाइए। सकल सृष्ट को राजा दुखिया, हर का नाम जपत होई सुखिया। तीन महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर बताई गई हैं। सबसे पहले, चाहे कोई कितने भी बड़े पद पर हो, चाहे कोई राजा भी हो, तो भी वो दुखी है। राजा होना, किसी विशिष्ट पद पर होना, व्यक्ति को सुखी नहीं बना सकता। मनोविज्ञान में ऐसे कुछ सिद्धांत है जिसमें ये कहा गया है कि एक व्यक्ति गरीब है, गरीब है इसलिए दुखी है, फिर उसे बहुत पैसे मिल जाते हैं, वो अमीर बन जाता है और लंबे समय तक अमीर बनता है, पर वो पैसे और फिर वो अमीरी थोड़े देर के बाद उसे सुख देना बंद कर देती है और वो उसी अवस्था में पहुंच जाता है जब वो गरीब था, अतृप्त असंतुष्ट। जैसे 4 साल तक कोई गरीब था, फिर अमीर बन गया, अमीर बनते ही खुशी हो गई, पर वो अमीरी लंबा समय चलती है और उसके बाद में एक प्लेट्यू स्टेज आ जाती है और उसमें वो फिर से दुखी हो जाता है। एक समय था जब कुछ नहीं था, आज सब है, परंतु दुख फिर वही कायम है। ये मनोविज्ञान के कुछ सिद्धांत है। तो यहां पर सकल सृष्टि को राजा दुखिया, चाहे सकल सृष्टि का कोई राजा हो, फिर भी वो दुखिया है। हर का नाम जपत होई सुखिया, जब तक उस एक परमात्मा का नाम नहीं जपता, तब तक व्यक्ति सुखी हो नहीं सकता। एक तो ये बात, और दूसरी और एक बात कही है, लाख करोरी बंध न परे, हर का नाम जपत निस्तरे। चाहे किसके पास कितना भी पैसा आ जाए, लाख करोड़, उसके बाद भी इच्छाएं पूरी नहीं होती। इच्छाएं पूरी होगी केवल हर का नाम जपत निस्तरे, जब तक उस परमात्मा का नाम न लिया जाए तब तक इच्छाएं पूर्ण नहीं होगी। और तीसरी बात, अनिक माया रंग तिख न बुझावे, हर का नाम जगत जपत आघावे। माया के कितने भी सुख मिल जाए, परंतु इतने सुख मिलने के बाद भी तिख न बुझावे, प्यास बुझती नहीं। कल की अव्यक्त वाणी, विषयों के भोग विष के भोग है, बाबा ने कहा। विषय भोग क्या है? विष के भोग। कितना भी भोग हो, तिख न बुझे, प्यास बुझती नहीं है। हर का नाम जपत आघावे। पहली बात बताई पद की, राजा, सकल सृष्ट को राजा दुखिया, हर का नाम जपत होई सुखिया। सुखी होने का मंत्र ही कुछ और है, पहला पद, दूसरा बताया धन, लाख करोड़ी बंध न परे, हर का नाम जपत निस्तरे, और तीसरा बताया सुख, सांसारिक सुख। ये तीनों ही चीजें व्यक्ति को पद सुखी नहीं कर सकता। धन उसकी इच्छा को मिटा नहीं सकता, और संसारिक सुख, संसारिक भोग उसकी प्यास बुझा नहीं सकते। जिन मार्ग इह जात अकेला, इस मार्ग पर जो अकेला जाता है, इस अध्यात्म के मार्ग पर, इस स्पिरिचुअलिटी के मार्ग पर, इस एनलाइटनमेंट के मार्ग पर, इस प्रभु प्रेम के मार्ग पर, उसके लिए क्या, तेह हर नाम संग होत सुहेला, हर का नाम प्रभु का नाम उसके लिए सुहेला, उसके लिए छत्र छाया, उसका मार्गदर्शन करेगा, उसकी पालना करेगा, सस्टेनेंस देगा उसे, उसके पथ को आलोकित करेगा। ऐसा नाम मन सदा ध्याइए, हे मन तू उसका नाम सदा मन में ध्यान कर, नानक गुरुमुख परम गत पाइए, नानक गुरुमुख परम गत पाइए। ऐसा जब उसका ज्ञान ध्यान करेगा, जब परम गति को प्राप्त होंगे। वरदान में क्या था आज, वरदान में क्या था सुबह की मुरली में, गत के बारे में और गति के बारे में क्या था, जैसी मत, जस मत तस गत, जैसी मत वैसी गत, ऐसा गायन है। तुम्हें श्रेष्ठ मत प्राप्त हुई है, इसीलिए तुम्हारी श्रेष्ठ गति होगी। संसार में लोग मरने के बाद सोचते हैं हमें श्रेष्ठ गति मिलेगी, तुम यहां मर्जीवा हो, और तुम्हारी श्रेष्ठ मत से तुम्हें श्रेष्ठ गति अर्थात प्रत्यक्ष फल अर्थात सफलता अभी अभी प्राप्त हुई है। वो लोग इंतजार करते हैं कि भविष्य में गति मिलेगी, तुम्हें अभी मिली है, अब प्राप्त है। क्या गति, गति अर्थात, गति अर्थात, गति के कम से कम 10 अर्थ है, गति और गत शब्द के कम से कम 10 अर्थ है। गति अर्थात स्पीड, एक अर्थ, गति अर्थात प्रवाह, फ्लो, दूसरा अर्थ, गति अर्थात ग्रह का गमन, भूगोल शास्त्र में गति अर्थात दुर्दशा, क्या गति हो गई उसकी, बैड कंडीशन। गति अर्थात लीला, गति अर्थात माया, गति अर्थात रंग रूप, गति अर्थात यहां जो शब्दों का अर्थ है, या आज की मुरली में जो अर्थ है, वो बाबा ने प्रत्यक्ष फल परिणाम, गति अर्थात परिणाम। परंतु पुराणों में, भारतीय सभ्यता में, गति अर्थात मोक्ष को कहा जाता है, गति अर्थात मुक्ति को कहा जाता है। क्या गति होगी, क्या गति प्राप्त होगी, अर्थात जो आज के वरदान में अर्थ है कि संसार के लोग सोचते हैं ये मरेगा उसके बाद में गति प्राप्त होगी। तुम यहां जीते जी मरे हुए हो, मर्जीवा तुम्हारा जन्म हो, तुम जो भी कर्म करते हो तुम्हें सफलता मिलती है, यही तुम्हारी गति है, क्योंकि तुम्हें श्रेष्ठ मत मिली हुई है। तो मत के आधार से तुम्हारी गति है, मत के आधार से तुम्हारी गति है। ऐसा नाम मन सदा ध्याइए, नानक गुरुमुख परम गत पाइए। मुरलियों में अधिक से अधिक शब्द जो आए हैं सिख लिटरेचर से आए हैं, बहुत सारे शब्द, चढ़ती कला, ये सारे शब्द जो आए हैं, पांच विकार, पंज चोर, पांच विकार कहां से आए? क्या पांच विकारों का गायन हिंदू धर्म में नहीं है? है, पर उस क्रम से नहीं है। इस क्रम से काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये जो क्रम है विकारों का, ये गुरु ग्रंथ साहिब में है। हिंदू धर्म में काम क्रोध लोभ ईर्ष्या मद मत्सर ऐसे अलग अलग क्रम है, परंतु ये जो क्रम जो मुरलियों में आता है और जिसको बाबा कहते हैं ये विकार है, ये माया है, ये रावण है, ये सारा सारा बहुत सारी चीजें मुरलियों की जो है सारी सीधा इधर से उठाई हुई है। तेरे भाने सर्व का भला, ये सब सिख लिटरेचर है। गति सिख लिटरेचर, जैसी गत वैसी मत सिख लिटरेचर। सदगुरु का निंदक ठोर ना पाए, चमकता जब सितारा, ये सारे सारे गुरु ग्रंथ साहिब, जपू जी साहेब, सुखमणि साहेब, सुख घनेरे, सिमर सिमर सुख पायो, ये सब कहाँ से आया है? इधर सिख लिटरेचर, क्योंकि सिख पंजाब और सिंध में बहुत ज्यादा प्रभाव था सिख का, सिख धर्म का। तो सकल सृष्टि को राजा दुखिया, हर का नाम जपत हर सुखिया, तीन बातें हैं। सबसे पहली है पद, दूसरा है धन और तीसरा है सुख। ये तीनों ही चीजें भटकाने वाली है। वो है, उनका प्रयोग सेवा के लिए किया जा सकता है, परंतु भटकाने का भी कारण ये तीनों ही चीजें बन सकती है। तो सबसे पहले लेते हैं पद। एक व्यक्ति सेवाधारी है और एक इंचार्ज है। एक छोटे पद पर है, एक बड़े पद पर है। जो बड़े पद पर है, इसका अर्थ ये नहीं कि पुण्य ज्यादा है। चाहे हजारों के सामने भाषण करने की सेवा हो या झाड़ू लगाने की सेवा हो। कल की साकार मुरली, मम्मा बाबा भी क्या करते थे? झाड़ू लगाते थे और बर्तन मांजते थे। कौन सी सेवा है वो महत्वपूर्ण नहीं है। कोई सोचे कि मैं लाख लोगों के सामने भाषण कर रहा हूं तो मेरा पुण्य ज्यादा है, और कोई सोच रहा मैं बाथरूम साफ कर रहा हूं तो मेरा पुण्य कम है। भाव क्या है, किस भाव से किया जा रहा है, इसके लिए पद निर्धारित नहीं करेगा। पद किसी का कुछ भी हो सकता है, छोटे से छोटा पद हो सकता है। बाबा ने कहा है कि तुम सेवा तुम्हारी साधारण है, परंतु स्थिति असाधारण हो। सेवा साधारण दिखाई दे रही है, ऊपर से झाड़ू लगा रहे हैं, परंतु संकल्प मन में महान है। मैं ब्राह्मण कुलभूषण आत्मा हूं, आज की साकार मुरली, मैं इस झाड़ का पहला पहला, आज की मुरली फाउंडर हूं। कौन हूं? फाउंडर। ऐसे ऊंचे संकल्प के साथ झाड़ू लगाया जा रहा है। मैं महान आत्मा हूं, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं, मैं देव आत्मा हूं, मैं कोटों में कोई हूं, और मैं विशेष पाठधारी हूं, कल का वरदान। ये शुद्ध फीलिंग में रहना है तो फिर अशुद्ध फीलिंग नहीं आएगी, फिर मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। सेवा अत्यंत साधारण परंतु स्थिति महान। किस भाव से सेवा की जा रही है, कितना समर्पण भाव है, कितने अनन्य भाव से की जा रही है, कितना निस्वार्थ भाव है, कितना निमित्त भाव है। जो भी सेवा कर रहे हैं, निमित्त भाव कितना कुटकुट पर भरा है। यदि छोटी छोटी सेवाओं में भी अहंकार है, यदि कुछ भी किया और उसमें नाम की कामना है, तो ये कामना ही भटकाएगी। ईश्वरीय यज्ञ में जमा सबसे ज्यादा उनका होता है, सेवा की और भूल गए, अपनी सारी सेवाओं को क्या करते जाना है, निष्काम बनाते जाना है। एक सेवा की और उसका ही एक महीने तक प्रोपोगंडा, उसका ही एक महीने तक विस्तार, और उसी को बुद्धि में घूमते रहे, काम हो गया, पूरा हो गया, आगे बढ़ो। तो पद निर्धारित नहीं करेगा और पद अहंकार को जन्म दे सकता है। इसलिए जो भी जहां भी है, ऑफिसर नहीं समझना है आपके को कि मैं ऑफिसर और मेरे अंडर ये दो लोग हैं, मैं बॉस, मैं इंचार्ज, मैं हेड। स्वयं को निरंतर सेवाधारी समझना। तो राजा अर्थात पद, और कोई कितने भी बड़े पद पर हो, ये ना समझे कि मैं बड़ा हूं। बड़ा होने का आधार दो चीजें हैं, स्थिति और पवित्रता। यज्ञ में आगे वो है जिसकी स्थिति आगे है। कितने कौन साल से है, किसने कितना पढ़ा है और कितना योग लगाया है, आगे वो है जिसकी स्थिति आगे है, जिसकी प्यूरिटी आगे है, और जिसकी प्यूरिटी अखंड है, और जिसकी प्यूरिटी में बार बार माया का वार नहीं, कोई विकार का अंश नहीं। ऐसी स्थिति जहां है वो आगे है। तो पहली बात बताई पद, दूसरा बताया धन। एक है विनाशी धन, एक है अविनाशी धन। अव्यक्त महावाक्य है बाबा के कि जिसने अपने आप को अविनाशी धन से अभी जितना भरा है, उसे स्थूल धन भी स्वतः प्राप्त होगा। अभी भी नहीं, द्वापर से जन्म ही ऐसे घर में होगा जहां पैसों का अभाव नहीं होगा। सतयुग त्रेता में तो अभाव है ही नहीं, परंतु द्वापर से भी ऐसे घर में जन्म होगा कि वहां पर पैसों की जो खींचातान, कश्मकश, भाग दौड़, उधेड़बुन जो संसार की आत्माएं करती है, थोड़ी सी नौकरी और थोड़े से पैसे के लिए सारा जीवन पैसा 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 पैसा, दिन रात पैसे का ही चिंतन, ऐसा ही जीवन है संसार की आत्माओं का, उसमें से बाहर ही नहीं निकल सकती। स्थूल पैसा अगर चाहिए, विधि है सूक्ष्म धन को जमा करो। ऐसी विधि किसी ने नहीं सिखाई आज तक। सूक्ष्म धन जहां होगा, स्थूल धन चरणों में आके गिरेगा। इसके लिए चाहे सेंटर, चाहे मधुबन, चाहे व्यक्तिगत जीवन, चाहे कोई संघ, आत्मा स्वयं को सूक्ष्म धन से भरते जाए। ज्ञान धन सबसे बड़ा धन है। जब धननंद चाणक्य का अपमान करता है, इतनी दूर से वो आता है ज्ञान के मंदिर में मगध, और पाटलिपुत्र में देखता है ये क्या हो रहा है। ज्ञान के सूर्य को राहु ग्रहण कर रहा है, ढक रहा है, और धननंद जब उसका अपमान करता है तो चाणक्य बहुत सुंदर वाक्य कहता है कि मेरा धन ज्ञान है धननंद, और मैं चाहूं तो अपना पोषण करने वाले राजाओं का निर्माण कर सकता हूं। शिक्षक साधारण नहीं होता, प्रलय और निर्माण उसकी गोद में खेलते हैं। मेरा धन ज्ञान है, ज्ञान की जो संपदा है सबसे बड़ी संपदा है। है हाथ में कुछ नहीं, परंतु जिसकी बुद्धि में ज्ञान है वह सबसे अमीर श्रीमंत रईस व्यक्ति है। तो एक है स्थूल धन, और वो स्थूल धन इच्छाओं को उत्पन्न करता है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने कभी ऐसा सोचा होगा कि मेरे पास इतना पैसा हो गया, अब और कुछ कमाने की आवश्यकता नहीं। धन की कामना ऐसी कामना है कि कभी भी पूर्ण नहीं होती। अमेरिका का सबसे अमीर व्यक्ति कभी हुआ था एंड्री कार्नेगी। एंड्री कार्नेगी जब मरा, 10 अरब पैसे छोड़ गया, फिर भी वो दुखी था जाते समय। फिर भी सोच रहा था कि और कमाता तो कितना अच्छा होता। धन सेवाओं के लिए प्रयोग किया जा रहा है, बहुत अच्छी बात है। सेवा में लगाना इसलिए कमाई की जा रही है, बहुत अच्छी बात है। जीवन यापन करना इसलिए कमाया जा रहा है, बहुत अच्छी बात है। परंतु धन जीवन का लक्ष्य ना हो जाए। ये तो हमने संसार की बात की, फिर है सेंटर, सेवा केंद्र। कल की मुरली में बाबा ने कहा था, कल या परसों, तुम्हें मांगना नहीं है कुछ भी, किसी से भी नहीं मांगना है। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। और कुमार बैठे हैं यहां पर, चाहे यहां चाहे सेवा केंद्र पर, पैसे की भीख कभी भी किसी से नहीं मांगना। अपने पैरों पर खड़े रहना, और जितना जल्दी हो सके अपने पैरों पर खड़े रहना, ताकि अपने माँ बाप को भी मांगने की आवश्यकता ना पड़े। क्योंकि व्यक्ति जिससे पैसे लेता है उसका दास और गुलाम बन जाता है। चाहे लौकिक में या अलौकिक में, हमने ऐसे ऐसे स्थान देखे हैं जहां कोई व्यक्ति है जो कि सेंटर बना कर दे रहा है और जो सहयोगी है, परंतु पूरा योगी और नहीं है, पूरा ज्ञानी नहीं है, और उसकी वजह से कई लोग डिस्टर्ब है। पर उसे कुछ कहा नहीं जा सकता है क्योंकि सेंटर बना कर दे रहा है। अजीब ढंग से फंस गए, क्या कहेंगे उसको? वो नाराज हो गया तो फिर सेंटर कैसे बनेगा? फिर रिट्रीट सेंटर कैसे बनेगा? फिर जमीन उसकी है, पर वो ज्ञानी नहीं है, वो सहयोगी है। पीस ऑफ माइंड और ये सारे चैनल पर थोड़ा थोड़ा सुना है तो उसको अच्छा लगा है, पर जरूरत पड़ी तो क्रोध, और जरूरत पड़ी तो जो काम करने वाले हैं उनको नौकर भी समझ लेता है और डांट भी देता है। इसलिए स्वतः मिल जाए बहुत अच्छा, जगदीश भाई ने कहा है। बाबा से जगदीश भाई ने कहा था कि सेंटर ऐसा हो कि किसी विकारी की दीवार उसको ना टच करे, किसी विकारी का एक पैसा भी उसमें ना लगे। और तीसरी और बात थी, दिल्ली यूनिवर्सिटी के सामने हो। तीसरी तो छोड़ो, परंतु पहली दो सब जगह लागू है। किसी भिखारी की दीवार सेवा केंद्र को टच ना करे, पहली बात। और दूसरी, किसी भिखारी का पैसा इसमें ना लगे। झोपड़ा रहा तो चलेगा, नहीं चाहिए वो रिट्रीट सेंटर जहां 1000 स्टूडेंट है। आश्रम की आवश्यकता है 5-स्टार होटल की नहीं, वो संसार में बहुत है। लोगों को प्रभावित करना है अपने तपस्या के वायुमंडल से, ना कि पर्दे, शोकेस, चमचम, लाइट इधर और लाइट उधर। ये सब चीजें हमारी नहीं है। सेवा केंद्र अर्थात आश्रम, चाहे सेवा केंद्र हो, चाहे मधुबन हो, चाहे हमारा कमरा हो, चाहे मन का ही कमरा क्यों ना हो, सूक्ष्म अति सूक्ष्म, उसमें दिखावा ना हो। तो दूसरी बात बताई है धन, और तीसरी सांसारिक सुख, विष के भोग। आज कहा सब बातों को भूल कर अशरीरी हो जाओ। अशरीरी अवस्था में जो सुख है और किसी अवस्था में नहीं है। शरीर से डिटैच होने में जो आनंद है वो शरीर से अटैच होकर भोग को भोगने में कभी नहीं हो सकता, परंतु इस अशरीरी अवस्था तक पहुंचने के लिए कड़ी तपस्या चाहिए। इतनी सस्ती नहीं है अशरीरी अवस्था कि हमने चाहा कि अमृत वेला हम उठ गए और हो गई, सारे दिन भर क्या किया, कितने उपराम और कितने साक्षी और कितनी रूहानी ड्रिल और का कितनी आत्मिक दृष्टि और कितना आत्माभिमानी स्थिति का अभ्यास और कितना स्वमान का अभ्यास और कितना ज्ञान का चिंतन और कितना मुरली का अध्ययन और कितना बोल में सारे दिन भर समर्थ रहा। अगर ये सब नहीं और हम ये सोचे कि अशरीरी अवस्था मिल जाए, नहीं हो सकता है। इसलिए संसार के सुख की जो प्यास है वो बनी ही रहती है। संसार के सुख सागर की लहरों की तरह है, इच्छा है, कभी भी पूर्ण नहीं होती है। जितना भोगो एडिक्शन क्रिएट करती है, लत, वही चाहिए वही चाहिए वही चाहिए। सब कुछ भोगने के बाद मरणासन्न व्यक्ति होता है, तब भी वंस मोर की कामना के साथ ही मरता है। और पता है उसे कि इन भोगों ने बहुत दुख दिए, परंतु छूट नहीं पाता। इसके लिए विषय विराग, संसार के सुख दबा नहीं देना है, ये अच्छे नहीं है। सोचना है, चिंतन करना है, मनन करना है, क्या पाया ये करके। जैसे कोई सिगरेट स्मोकिंग करता है, उसे कहा जाओ सिगरेट बहुत खराब है, वो भी सोचता है बहुत खराब है और छोड़ देता है। दमन हुआ, कुछ समय के बाद फिर चालू करता है, फिर आकर्षण। ये विधि नहीं है, ये दमन की विधि है। ये काम विकार बहुत आदि मध्य अंदर दुख देता है, छोड़ दो इसको। छोड़ दिया, प्रतिज्ञा की, फिर आया, दमन हुआ था। साधु संतों ने संसार छोड़ दिया, जंगलों में जाके बैठ गए। वो दिखाया है अप्सराएं नाचती है, वो अप्सराओं को क्या पड़ी है बेचारे बूढ़े बड़े और ऐसे पतले दुबले। वो गायन यहां का है, वो मन का ही प्रक्षेपण है, प्रोजेक्शन ऑफ द माइंड। जो दमन हो गया था और जो इच्छाएं अपूर्ण थी वो वहां बैठकर सब बाहर निकल रहा है। इसके लिए डी एडिक्शन की जो प्रोसेस है उसको समझना है, क्योंकि आत्मा एडिक्ट हो गई है सेंशुअल प्लेजर्स, सांसारिक सुखों की। आत्मा को एडिक्शन हुआ है विकारों का। क्यों काम विकार को इतना पकड़ के है सारी आत्माएं, एडिक्ट हो गई है, क्योंकि उससे कुछ तो मिल रहा है। ये नहीं कहा जा सकता है कुछ भी नहीं मिल रहा है, कुछ है सुख पर अल्पकाल का। उसके स्वरूप को समझना, जानना, और समझ से उससे मुक्त होना, यह समझ लेना कितना वो व्यर्थ है, तो ही आत्मा मुक्त होगी। किसी को स्मोकिंग से छूटना है, वो अभ्यास करना पड़ेगा, उसको एकांत में चिंतन करना पड़ेगा, ऐसे ग्रुप को ज्वाइन करना पड़ेगा जो पुरुषार्थरत है, या उन लोगों से मिलना पड़ेगा जो छूट चुके हैं, जिनकी मुक्ति हो गई है, तब वो जाके छूट पाएगा। और उसे खुद चिंतन करना पड़ेगा, इसने मेरे जीवन का क्या क्या कर दिया, कितने झगड़े हुए, कितने पैसे गए, क्या क्या नुकसान हुआ, दोष दृष्टि। उसी तरह संसार के सुख और आत्मा, ये सुख द्वापर से पकड़े हुए हैं और इतने जबरदस्त पकड़े हुए हैं कि अब वो प्रयत्न करता है जैसे ही छूटने के, विद्रोह खड़ा होता है, दमन होता है, थोड़ी देर के लिए ठीक होता है, फिर से वापस आता है और फिर आत्मग्लानी होती है, ये मैंने क्या कर दिया, ये तो मुरली में कहा है श्रीमत के विरुद्ध है, भगंती फारकती देवंती रसातल में गिरते हैं। जो भी चीज छोड़नी है उसके दोष का चिंतन करना है, जो भी चीज छोड़नी है उससे होने वाले नुकसान की लिस्ट बनानी है, वो इंटरनेट भी हो सकता है, वो टीवी मोबाइल सोशल मीडिया हो सकता है, जो भी चीज छोड़नी है उसने जीवन को कैसे नारकीय बना दिया, हेलिश, उसका चिंतन करना है। जिस भी संबंध से मुक्त होना है उस संबंध में जीवन में कैसे विष खोल दिया, उसका चिंतन करना है, तब कहीं जाकर उससे मुक्ति होगी। और एक दिन में नहीं होगी, क्योंकि वो संबंध बनने को 10 साल यदि लगे, कम से कम 10 महीने तो लगेंगे पूरा छूटने के लिए। वैसे छूटने की प्रोसेस तो एक संकल्प है, दृढ़ संकल्प बस, परंतु वो संस्कार बहुत शक्तिशाली है, अनेक अनेक मार्ग ढूंढेगा आने के, इधर से दबाव उधर से आएगा, इधर से दबाव वहां से आएगा, छत से, खिड़की से, कभी कभी जमीन से बाहर आएगा, जमीन को फाड़कर। हमने सोचा कि ये विकार तो बिल्कुल चला गया, अब क्रोध है ही नहीं, मैं संपूर्ण निक्रोधी, जैसे एक सन्यासी है, क्रोध करता था, वन में चला गया पहाड़ों पर, 15 साल तक 20 साल तक तपस्या की और 15 साल में एक बार भी क्रोध नहीं किया, क्योंकि एकांत में अकेला रहता था, अपनी कुटिया बनाकर खुद जो भी भोजन बनाना बनाना और दिन भर तपस्या करना, कभी संसारी व्यक्तियों के संपर्क में नहीं आता था, दूर ही रहता था। और उसे लगा 20 साल के बाद मैंने तो क्रोध को पूरा ही जीत लिया, क्रोध है ही नहीं। फिर वो निकला एक्सपेरिमेंट करने, देखने के लिए, और भिक्षा पात्र लेकर किसी द्वार पर गया, भिक्षाम देही, और एक छोटा सा बच्चा वहां रो रहा है, वो कहता है उसको शांत हो जाओ, वो और जोर से रोता है, उसको और कहता है शांत हो जाओ, वो और जोर से रोता है, और अभी उसको क्रोध आ जाता है, बिल्कुल डंडा ही ले लेता है हाथ में, एक बार बोला ना शांत हो जा, क्रोध तो गया ही नहीं। फिर वो 20 साल क्या था, जब एक बार भी क्रोध नहीं किया, वो दमन था, दबाया हुआ था खाली। ये विधि नहीं है, भागना नहीं है, जागना है, अध्यात्म अर्थात एस्केपिज्म नहीं, पलायनवाद नहीं, भगोड़ापन नहीं, अवेकनिंग, आत्मा जागृत हो जाए और देखे चीजों को आंखों में आंखें डालकर, ये सत्य ये असत्य, ये नित्य अनित्य, ये सही ये गलत, ये श्रीमत ये मनमत ये परमत, जब ये छाटना आ जाएगा तो जीवन सर्व सुगम होगा। एक ऐसा ही एक साधु गांव में रहता है, और जहाँ साधु महात्मा होते संसारिक लोग आ जाते, मेरी पत्नी का क्या होगा, बेटे का क्या होगा, वो बीमार है, उसका इंटरव्यू का क्या होगा, पैसे कैसे मिलेंगे, दूसरी शादी कैसे होगी, सो ऑन, इस तरह के प्रश्न होते संसारी व्यक्तियों के, धन कैसे मिलेगा, शांति कैसे मिलेगी, तो वो साधु इतना परेशान हो जाता है और क्रोध करने लगता है जो आता है, जिज्ञासु भक्त, और फिर सोचता है ये क्रोध से तो बड़ा नुकसान है, फैंस इतने ज्यादा है उसके आज की भाषा में, और वो अपने फैन से ही परेशान, सोचता है यहां मैं रुकूंगा ही नहीं, मैं जा रहा हूं, और पहाड़ों पर जाता है, पहाड़ों पर एक कुटिया में रहने लगता है, पर पानी भरने के लिए उसे पहाड़ी से नीचे आना पड़ता है, तो अपना कमंडलू लेकर रोज नीचे आता है, एक बार नीचे आता है पानी भरता है, चढ़ते चढ़ते कमंडलू नीचे गिरता है, फिर उठाता है, फिर पानी भरता है, फिर चढ़ते चढ़ते दोबारा गिरता है, फिर नीचे आता है, फिर जाता है, फिर गिरता है, अब उसको क्रोध आ जाता है, और फिर वो सोचता है यहां तो कोई भी नहीं है, क्रोध आया कैसे, क्रोध वहां इसलिए आ रहा था कि लोग थे जो परेशान कर रहे थे, वो ये सोचता था, परंतु क्रोध उन व्यक्तियों के वजह से नहीं, क्रोध अंदर बैठा है। इसके लिए यहां जो बात थी सुखों की, उन सुखों में इतना लिप्त होकर इतना डूब नहीं जाना कि साधना ही बाहर रह जाए, दोष डी एडिक्शन नुकसान क्या क्या है उसका चिंतन सोचना गहराई से, तब कहीं जाकर फाइनल मुक्ति होगी। अभी जो हुआ है खाली दमन हुआ है, सप्रेशन, थोड़ी देर के लिए दबा के रखा है, अवसर की तलाश है, अवसर आते ही फिर से बाहर निकलेगा, वो काम विकार भी हो सकता है, क्रोध भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये तीन चीजें हैं। चौथा बात बताई है जो कि बहुत सुंदर है, जिय मार्ग इह जात अकेला, तेह हर नाम संग होत सुहेला। इस मार्ग पर सबको कैसे जाना है, अकेला, एकांगी पगदंडी है ये मार्ग, क्या है, एकांगी पगदंडी है। कोई अगर सोचे कि मैं इसको साथी बना लूं, ये बहुत अच्छा भाई है, ये बहन बहुत अच्छी है, इसको साथी बना लेता हूं, क्योंकि ज्ञान की शेयरिंग चल रही है, ज्ञान की, व्यर्थ नहीं ज्ञान, या फिर हम ये सोच रहे कि ये भाई बहुत अच्छा है, बहन बहुत अच्छी है, इसको सेवा का साथी ही बना लूं, और जिसको साथी बना लूं उससे ही लगाव हो गया, और जिसके साथ ज्ञान की चर्चा कर रहे उसी में आसक्ति हो गई, साथी से, सीनियर से या जूनियर से, तीनों में से किसी को भी, किसी के साथ भी हो सकती है। प्रेम ऐसी चीज है उम्र को नहीं देखता है, किसी से भी हो सकता है। और जिसे व्यक्ति प्रेम समझता था, धीरे धीरे वो कुछ और ही बन जाता है, और उसे पता तब चलता है जब वो फंस जाता है, और ये प्रक्रिया इतनी सूक्ष्म है कि यदि हर एक आत्मा जो जागृत नहीं है पाएगी कि मैं फंस चुकी हूं कहीं ना कहीं, किसी और के कल्याण की कामना है, और जिसकी कल्याण की कामना हम कर रहे हैं कि मैं करूं, शायद मैं ही बाधा हूं उसके कल्याण में, जब तक मैं ना हट जाऊं उसका कल्याण नहीं हो सकता, पर ये अब मुझे कौन समझाएगा, क्योंकि मैं ही ये सोच रहा हूं कि मुझे इसका कल्याण करना है, इस कन्या का, इस बहन का और इस भाई का, जबकि बाधा ही मैं हूं, क्यों, क्योंकि मोह हो गया है, क्योंकि मैंने उसको अपने मोह में फंसाया है, पारस्परिक मोह, पारस्परिक फंसाने की, वो मुझे फंसा रहा है, मैं उसको फंसा रहा हूं, इसलिए यह मार्ग कैसा है, अकेले का, या अकेले ही चलना है इस मार्ग पर। जब जब किस किस को साथी बनाया, गिरे, कोई भी हो सकता है वो। हाँ, सहयोग सबका ले रहे, प्यार सभी से है, मोह ना हो। अगर मोह है, अपने मोह को सार्वजनिक कर देना, फिर सार्वजनिक मोह अर्थात प्रेम, इसी एक से मोह नहीं, इससे भी उतना ही, उससे भी उतना ही, उससे भी उतना, उससे भी उतना, सबसे, फिर वो विश्व कल्याण की भावना बनेगी। परंतु एक ही अच्छा लगना और एक की ही स्तुति करना, एक में ही मन। एक बहन का फोन आया था, वो कह रहे थे कि एक भाई बहुत अच्छा है, सेवा बहुत अच्छी करता है और ज्ञान मनन भी बहुत अच्छा करता है, और उसकी बुद्धि तो बहुत ही तीक्ष्ण है, और न्यू आइडियाज इतनी रहती है उसके पास की बात मत पूछो, और ऑलराउंडर भी है, पर मैं जब भी योग करने बैठती हूँ उसी का चेहरा सामने आता है, अब क्या करूँ। सभी ठीक है, अब क्या करें, योग करने बैठे कि वो ही दिखता है, बाकी है कुछ नहीं, पर दिखता जरूर है, स्वप्न में भी आता है कभी कभी। तो ये क्या हुआ? पानी तो बहुत अच्छा है, वर्षा जो ऊपर से आ रही है, जमीन भी बहुत अच्छी है, पर वो वर्षा और वो जमीन जब पानी मिलता है तो कीचड़ बनता है। ये भी अच्छा और वो भी अच्छा, पर जो मिल रहा है वो कीचड़ है। इसके लिए सावधान, सबसे प्यार, सबके साथ, सबका सहयोग, सबकी सेवा, परंतु कमल वत, अनासक्त। ना हमारे प्रेम में कोई पड़ जाए और ना हमें किसी के प्रेम में पड़ना है। इतना स्वयं को डिटैच रखना है, सारी दुनिया हमारे पीछे और हम उस एक के पीछे, हम ऐसे भाग रहे, वो हमारे पीछे भाग रहे, भागने दो, हम उधर, उनमें फंसना नहीं, फंसे की गए। इसके लिए मार्ग कैसा है, तेह जीव मार्ग इस इह जात अकेला, तेह हर नाम संग होत सुहेला, ऐसा नाम मन सदा ध्याइये, नानक गुरुमुख परम गत पाइये। इसके लिए स्वयं को अकेला कर देना, और वास्तव में जब हम पूर्ण रूप से अकेले हो जाते तभी परमात्मा के साथ का अनुभव होता है। जब तक व्यक्तियों को साथी बना के रखा है अनुभव नहीं होगा, क्योंकि याद उन्हीं की आएगी। कल की मुरली, अव्यक्तवाणी, परमात्मा प्रेम, परमात्मा साथ का अनुभव कराता है, भगवान के समीपता का अनुभव कराता है, बाप समान स्थिति का अनुभव कराता है, ब्राह्मण जीवन का आधार है, जीवदान है नए जीवन का, कल्प कल्प के पुकार की प्रालब्ध, निस्वार्थ प्रेम में। बिना परमात्मा प्रेम के जीवन कैसा है? निरस, सूखा गन्ना। ऐसा प्रेम एक उसके अतिरिक्त और कोई नहीं दे सकता, डबल अधिकार देने वाला प्रेम है। बाकी सारे प्रेम अधिकार को छीनने वाले हैं, विनाशी प्रेम, यह अविनाशी प्रेम है। तीन मंजिलों को पार कराने वाला प्रेम है, देहभान, संबंध और पदार्थों के आकर्षण, सभी से परे ले जाने वाला, भाग्यवान बनाने वाला है ये परमात्मा प्रेम। उस परमात्मा प्रेम से आत्मा जब भरती है तो फिर व्यक्तियों की आवश्यकता नहीं होती है। यहां पर अकेले हो जाना, भीड़ के बीच पर अकेले, और कनेक्शन केवल एक से ही, सर्व संबंध, एक की ही याद, एक की लगन, एक की याद, एक से रिश्ता, एक के प्रति समर्पण भाव, एक की याद, एक बाप, दूसरा ना कोई, और तीसरा अगर आया तो तीसरा नेत्र बंद। तीसरे ने एंट्री की तो तीसरा नेत्र बंद हो जाएगा। आज कहा ना बुद्धि को ताला लग जाएगा, तुम्हारी बुद्धि को पहले ताला लगा था, बुद्धि को ही ताला लग जाएगा, तो बुद्धि जो भी काम करती है सब बंद। रविंद्रनाथ टैगोर की एक कविता है अंग्रेजी में, इफ दे आंसर नॉट टू योर कॉल वॉक अलोन, एकला चलो रे, बंगाली में लिखी हुई है। उन्होंने ही बाद में इंग्लिश में भी उसको ट्रांसलेट किया। यदि वो तुम्हारी पुकार न सुने, तुमने पुकारा आओ परंतु उन्होंने पुकार नहीं सुनी, तो क्या करो, वॉक अलोन, एकला चलो रे। इफ दे आर अफ्रेड एंड कावर म्यूटली फेसिंग द वॉल, ओ धाउ अनलकी वन, ओपन योर माइंड एंड स्पीक आउट अलोन। यदि तुम घबरा गए, इफ दे आर अफ्रेड एंड कावर म्यूटली फेसिंग द वॉल, यदि वो घबरा गए और तुम्हारे साथ आने को तैयार नहीं है, वो उधर दीवार की तरफ मुंह करके हुए है, तुम कितने भी अभागी हो अकेले चलो। ये एक्सपेक्ट मत करो कि वो मेरे साथ आए, क्योंकि तीव्र पुरुषार्थ के मार्ग में भीड़ बहुत कम है। भीड़ तो उधर है, आलस अल्विलेपन, और पुरुषार्थ के मार्ग में भीड़ बहुत है, पर तीव्र पुरुषार्थ के मार्ग में भीड़ कम। रास्ता खाली पड़ा है, इंटरनेशनल राम एक्सप्रेस हाईवे, कोई जाने को तैयार नहीं है इस पर। इफ दे टर्न अवे, यदि वो मुंह फेर ले, एंड डेजर्ट यू वाइल क्रॉसिंग द विल्डरनेस, बंजर जमीन है, भूमि है, और उसमें जाते समय वो तुम्हें अगर छोड़ दे, ओ धाओ अनलकी वन, ओ हे अभागे, ट्रैम्पल द थॉर्न्स अंडर द हैट्रेड एंड अलोंग द ब्लड लाइन ट्रैक वॉक अलोन, कांटों को अपने पैरों के नीचे रोंदो और उस रक्त रंजित भूमि पर अकेले चलो, वॉक अलोन, एकला चलो रे। ये एक्सपेक्ट मत करो कि वो आए, मदद करे, साथ दे, प्रेम दे, अटेंशन दे, केयर करे। हम बीमार हैं, कोई देखने वाला नहीं है, कोई पूछे तो सही, सुबह बुखार था, अब कैसे हो, खाना खाया क्या, नहीं चाहिए, पूछे तो ठीक, ना पूछे तो ठीक, किसी से कुछ भी नहीं चाहिए। इफ दे शट डोर्स, यदि वो दरवाजे खिड़कियां बंद कर ले, एंड डू नॉट होल्ड अप द लाइट, और तुम्हें प्रकाश ना दिखाए, व्हेन द लाइट इज ट्रबल्ड विद स्टॉर्म, जब रात का अंधेरा है और तूफान चल रहा है और वो तुम्हें प्रकाश न दे, क्या करो, ओ धाओ अनलकी वन, हे अभागे, विद द थंडर फ्लेम ऑफ पेन इग्नाइट थाइन ओन हार्ट एंड लेट इट बर्न अलोन, तुम्हारे हृदय में जो दर्द है उसी दर्द को प्रकाश बना लो, वो जो दुख है उसी को प्रकाश बना लो, इग्नाइट दाय हो ना, अपने हृदय को ही जलाओ और उसमें फिर तुम चलो, लेट इट बर्न अलोन, वॉक अलोन। तो ये मार्ग अकेले चलने का है, एकांगी पगडंडी है, कोई साथी बने ये एक्सपेक्टेशन नहीं, ये अपेक्षा नहीं, शायद वो बंधन बन जाए, और सबने छोड़ दिया, अच्छा ही है छोड़ दिया, ताकि अब मैं अकेले चल सकूं, क्योंकि साथ अब परमात्मा है। तो ये थी आज का सुखमणि। आज की मुरली में क्या कहा अब आप बताएंगे, माता है सुबह की साकार मुरली में क्या क्या कहा, बाप टीचर सदगुरु कंबाइंड है तो उसकी कृपा क्या है, वो पढ़ाता है यही उसकी कृपा, कृपा है मेहर अनुकंपा मेहरबानी, वो पढ़ाता है यही उसकी कृपा है, कितनी अच्छी बात है, वो तुम पर मेहनत करता है ये उसकी कृपा है, एक दूसरी जगह आया है, यही उसकी कृपा है, उसको कृपालु दयालु अल रहमान अल रहीम कंपैशनेट ओशन ऑफ कंपैशन ओशन ऑफ मर्सी कहा जाता है, वो क्यों, बिनुकरा कारण रघुनाथ कृपाला, क्यों, क्योंकि उसकी ये कृपा है, कौन सी, पढ़ाना, श्रेष्ठ मत देना और फिर श्रेष्ठ गत होगी उससे, मर्दन। और क्या कहा? कर्तव्य याद दिलाया, कौन सा कर्तव्य, कौन सा एग्रीमेंट, कौन सी प्रतिज्ञा? अलग अलग जगह बोला है कुछ कुछ। हाँ, पढ़ना पढ़ाना ये क्या है तुम्हारा? कर्तव्य। और एग्रीमेंट तुमने कौन से किए? आप समान बनाने की एग्रीमेंट। और प्रतिज्ञा कौन सी की है? आपके बन के रहेंगे, ये प्रतिज्ञा की है। और क्या कहा आज की मुरली में? तुम डबल अहिंसक बनते हो, दो प्रकार की हिंसा है, एक है स्थूल, एक है काम कटारी। तुम डबल अहिंसक हो। हिंसा क्या है? आप सबको काम दे रहे हैं, हिंसा की क्या परिभाषा है? जैन धर्म में कितने प्रकार की हिंसाएं हैं? लगभग 400 प्रकार की हिंसाएं होगी। हिंसा के बहुत सारे प्रकार है, बहुत सूक्ष्म सूक्ष्म हिंसा है जैन धर्म में मुख्य रूप से। और वहां पर अहिंसा की जो परिभाषा है वो कुछ और है। और तुम जल मर भस्म हो गए थे, किसके पुत्र थे? सागर ऋषि, वो दिखाया है ना, तो सागर के बच्चे। और ये है रचता का रचिता का रचना से प्यार। क्या, कौन सा प्यार? वो मत देते हैं श्रेष्ठ, वरदान में है ना लास्ट लाइन, क्योंकि वो मत देते हैं श्रेष्ठ, जिससे तुम्हारी गत श्रेष्ठ बनती है, प्रत्यक्ष फल मिलता है, सफलता मिलती है। ये है रचता का रचना से प्यार। और स्वीट होम जाना है, वो भी घर ये भी घर, अशरीरी बनना है सब कुछ भूल कर। और हाँ, पढ़ाई में माता पिता को फॉलो करना, एडॉप्ट किया है बाबा ने। और बिल्ली बिल्ली को भी याद किया था ना आज, वो ब्रिटेन में, नहीं नहीं ब्रिटेन में ये चित्र देखा है? नहीं, एक पद है मास्टर टू द कैबिनेट ऑफिस, मास्टर टू द कैबिनेट ऑफिस। तो उसमें वो एक बिल्ली है, उसका नाम भी है, अभी वो फिफ्थ नंबर पर इलेक्टेड हुए कि उसको बहुत बड़ा पद मिला है वहां पर, इसके पहले चार पांच थी, अभी वो पांचवें नंबर पर है। तो उसको कहा जाता है चीफ माउसर टू द कैबिनेट ऑफिस। उसका वो चित्र भी है, नहीं आ रहा है। अच्छा, और क्या कहा? नवदा भक्ति, बाबा ने क्या बढ़िया बात कह दी, जब वो बहुत नवदा भक्ति करते हैं तब मैं उन्हें साक्षात कर रहा और तुमको ऐसे ही सामने बैठा हूं। जैसे कोई एक माँ है अपने बेटे को कह रहा, देखो उस तुमको मैंने ये दिया, उसको मैंने ये सब दिया, कुछ नहीं दिया, तुमको मैंने ये बड़ा वाला दिया, वैसे उसको मैंने इतनी, उसने मेहनत की, उसको इतना सा साक्षात्कार दे दिया। तो कोई बहुत नवदा भक्ति जब करता है तब साक्षात्कार कराता हूं। और एक दूसरा काम दे रहे हैं आपको, पहला काम दिया हिंसा, हिंसा के बारे में ढूंढो, हिंसा के कितने प्रकार है एक, दूसरा काम है नवदा भक्ति कौन कौन सी है, भागवत में अलग है, रामायण में अलग है, वो कौन कौन सी है और उनका ज्ञान के साथ क्या संबंध है। किसी ने बनाया था नवदा भक्ति और ये नवदा ज्ञान, उधर श्रवण मनन वो जो भी करते हैं, प्रथम भगति संतन कर संग, दूसरी मम कथा प्रसंग। रामायण की नव भक्ति अलग है जो राम ने शबरी को सुनाई, और भागवत की नवदा भक्ति अलग है। तो उधर की नव भक्ति और इधर नव ज्ञान, क्या कनेक्शन है ये ढूंढना है सबको। और अर्चनम वंदनम पाद सेवनम आत्मनिवेदनम, ये नव भक्ति है। और दूसरा पॉइंट्स, ये भूलना नहीं है। और और कोई पॉइंट? प्रिंस बनाने। और तो ये आज की मुरली थी, जैसे आज की मुरली है वैसे कल एक मुरली जो चलेगी परमात्मा प्रेम पर मुरली है, बहुत पावरफुल मुरली। इसको अभी से सोचते जाना कि परमात्मा प्रेम पर बाबा क्या क्या कह सकता है, या परमात्मा प्रेम क्या है, उसको कैसे बढ़ाए, क्या किया जाए, क्योंकि प्यार तो सबको है। नया टॉपिक नहीं है, बहुत कॉमन टॉपिक है परमात्मा प्रेम, परंतु कल पूरी मुरली उसके ऊपर चल रही है, तो क्या कहा होगा, थोड़ा सा एक्साइटमेंट चाहिए कि क्या होगा और कैसे उसको बढ़ाए और क्या उसकी परिभाषा है, कौन से उसके घटक है, सोचते जाना है इसके विषय में। ठीक है, किसने पढ़ किया ये कल वाली? किए पढ़े, क्या बोला? सूखा गन्ना, बिना परमात्मा प्रेम के जीवन क्या है, तीन मंजिल पार करा देता है। और तुमने त्याग किया, मैंने ये किया, मैंने वो छोड़ा, मैंने, तुमने त्याग क्या किया है, जो छोड़ा है वो तो क्या है, कौड़ी, और त्याग और तुम्हारा भाग्य है हीरा। और निस्वार्थ, 14 पॉइंट है टोटल परमात्मा प्रेम की, टोटल 14 पॉइंट्स। मंडे को हम रिवाइज कराएंगे, कल पांडव भवन में होगी, तो 14 पॉइंट्स निकालना है उसमें से परमात्मा प्रेम के विषय से, और उसी क्रम में जिस क्रम में मुरली चली है, ठीक है? तो वो याद रहेगी हमेशा के लिए। और कोई पॉइंट? ब्राह्मण जीवन का श्रेष्ठ आधार है। और वो सेकंड मुरली है, उसको छोड़ देते, ये टॉपिक अलग है, वो अलग है। सकाश क्या करता है? लवलीपन। तीन प्रकार के बच्चे, प्यार करने वाले, निभाने वाले और स्वरूप होकर समाने वाले। तो इस तरह से मुरली का निरंतर अंदर ही अंदर चिंतन चालू रहे तो स्थिति ऊपर जाएगी। ओम शांति।